सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंतानंद तीर्थंकरों की जन्मभूमि शाश्वत तीर्थ अयोध्या से आप सब ये स्वाध्याय करने जा रहे हैं। आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती मुनिराज के द्वारा रचित गोमठ सार जीव कांड नाम के ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ हुआ है। ये 734 गाथाओं में रचित ग्रंथ है, किंतु पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी के द्वारा केवल 173 गाथाओं का इसमें संकलन है, जो आप सबके लिए महान उपयोगी है और जीव तत्व की प्ररूपणा को कहने वाला है। तो अब आपको जानना यह है कि जितने भी अध्ययन की क्लासेस हो रही हैं, ये सब गणिनी ज्ञानमती यूट्यूब चैनल में आपको उपलब्ध हैं। आप सभी प्रवचनों को सुनकर और दोबारा से भी उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया हो क्लास, उनके लिए भी यूट्यूब चैनल में ध्यान रखेंगे, गणिनी ज्ञानमती यूट्यूब चैनल में ये प्रवचन उपलब्ध हैं। दूसरी बात, इस ग्रंथ का सूक्ष्मता से अध्ययन कीजिए और आपको शीघ्र ही हम सूचित करेंगे कि इसकी पहली परीक्षा कब होगी। जैसे पहले रत्नकरण श्रावकाचार, आश्रव त्रिभंगी आदि ग्रंथों का अध्ययन करके आपने परीक्षा दी है, आपने ज्ञान का परिचय प्रदान किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। जब 1200 लोगों ने परीक्षा दे करके और उत्तीर्णता प्राप्त की, उसके साथ पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। तो अब उसी श्रृंखला में ये गोमठ सार जीव कांड सार ग्रंथ प्रारंभ हुआ है। 20 तारीख से प्रारंभ हुआ है, आज 24 नवंबर है। अब हम आ रहे हैं पांचवी गाथा पर। गोमठ सार के मंगलाचरण के साथ स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। सिद्धम शुद्धम पणिमीय जिनिंदु वर्णेमि चंद मकलंकम गुणरयण भूषणदयम जीवस्य परूवणम वोच्छम। जीव तत्व की प्ररूपणा को कहने की इच्छा व्यक्त करते हुए आचार्य देव ने भगवान नेमिनाथ के गुणों का वर्णन किया कि गुणरयण भूषणदयम, जिनके अंदर गुण रत्न रूपी भूषण सदा ही उदय को प्राप्त रहते हैं, अर्थात जिनमें अनंत गुण विद्यमान हैं और उनके आगे से पीछे तक जहां से भी देखें तो गुणों के ही भंडार होते हैं, क्योंकि तीर्थंकर के समान इस धरती पर दूसरा कोई महान पुण्यशाली होता नहीं। वे तो गर्भ से ही मति श्रुत और अवधिक ज्ञान के धारी होते हैं और दीक्षा लेते ही उनको मनापर्य ज्ञान हो जाता है, तपस्या के पश्चात केवल ज्ञान हो जाता है और घातिया अघातिया कर्मों को नष्ट करके सिद्ध परमात्मा बन जाते हैं। ऐसे सिद्धों की श्रेणी में 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ को अपना लक्ष्य बना करके और स्वयं नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती अपने नाम को सार्थक करते हुए जीव तत्व की प्ररूपणा को बताते हैं कि जीव को हम 20 प्ररूपणाओं के माध्यम से कहेंगे। तो उसमें गुणस्थान, जीव समाज, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, 14 मार्गणाएं और उपयोग, इन 20 प्ररूपणाओं के माध्यम से कहा है। तो सबसे पहले इस अब पांचवी गाथा के अंदर गुणस्थानों के नाम बता रहे हैं। आपने चौथी गाथा में गुणस्थान का लक्षण जाना, जैसा कि नाम से ही परिलक्षित होता है। गुण स्थान माने गुणों के स्थान हैं जो, और जो अवगुण से गुणों की श्रेणी सोपानों को चढ़ाते हैं वह कहलाते हैं गुणस्थान, और वे गुणस्थान 14 होते हैं। उन 14 गुणस्थानों के नाम पांचवी और छठी गाथा के अंदर आचार्य देव ने दिया है। यद्यपि इनका नंबर बड़े गोमट सार के अंदर और कुछ होगा, लेकिन इस गोमट सार जीव कांड सार की गाथाओं की श्रृंखला में 5 और 6 नंबर की गाथा के रूप में इन्हें प्रस्तुत किया गया है। मिच्छो शासन मिस्सो अविरध सम्मो यदेश विरदोया,
अविरध सम्मो यदेश विरदोया,
विरदापमत्त इदरो अपूव अणि अट्टी सुहो मोया। एक साथ पढ़ेंगे गाथा। मिच्छो शासन मिस्सो अविरध सम्मो यदेश विरदोया, मिथ्यात्वं शासन मिश्र अविरत सम्यक्त्वं च देश विरतश्च, विरताः पमत्त इतरः अपूर्वा अनिवृत्तिः सूक्ष्मश्च। इस गाथा में 10 गुणस्थानों के नाम दिए हैं, जिसमें पहला गुणस्थान है मिथ्यात्व, दूसरे गुणस्थान का जो शासन नाम दिया है शासन माने सासाधन, और तीसरा है मिश्र गुणस्थान, चौथा अविरत सम्यक दृष्टि नाम का गुणस्थान, पांचवा देश विरत, छठा प्रमत्त विरत, सातवां इतरा माने अप्रमत्त विरत, और आठवां है अपूर्व करण, नौवां अनिवृत्तिकरण, और दसवां सूक्ष्मश्च, सूक्ष्म सांप्राय नाम का 10वां गुणस्थान है, यानी 10वें गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय। आगे अन्य और 4 गुणस्थानों के नाम दिए हैं। वसंत खीण मोह
सजोग केवल जिनो अजोगिया।
चौदस जीव समासा कमेण सिद्धायणा दवा। एक साथ पढ़िएगा था। वसंत खीण मोह सजोग केवल जिनो अजोगिया, 14 जीव समासा कमेण सिद्धायणा दवा। इन्हें क्रम प्राप्त 11वें गुणस्थान का नाम है उपशांत मोह, 12वें गुणस्थान का नाम क्षीण मोह, 13वां गुणस्थान है सयोग केवली, और 14वें गुणस्थान का नाम है अयोग केवली। इस तरह से 14 जीव समासा यानी गुणस्थान को जीव समास की भी संज्ञा प्रदान की है। ये षटखंडागम की धौला टीका आदि ग्रंथों के आधार से इसको दिया है। वहां पर गुणस्थान को जीव समास नाम से भी कहा है। तो 14 जीव समासा, ये 14 प्रकार के जीव समास यानी 14 गुणस्थान होते जीव समास, इसलिए कह दिया कि संक्षेप में इनमें जीवों के अस्तित्व का ही निरूपण किया जाता है। किसी अजीव के कोई गुणस्थान नहीं होता, जीव के ही गुणस्थान बनते हैं। कमेण सिद्धायणा दवा, ये क्रम से 14 गुणस्थानों के नाम बताए हैं, और उसके पश्चात सिद्ध भगवान यानी 14वें गुणस्थान को पार करके गुणस्थानातीत अवस्था सिद्धों की होती है, और गुणस्थानातीत होकर के हर परमात्मा सिद्ध परमात्मा बन जाते हैं, जो सिद्ध शिला पर विराजमान रहते हैं, अनंत काल तक विराजमान रहेंगे, और सिद्ध बनने के बाद कोई भी जीव वापिस संसार के अंदर आता नहीं। इसलिए उन्हें सिद्ध संज्ञा से संबोधित किया कि सिद्ध का मतलब जिनकी सारी कार्य सिद्ध हो गए, और सिद्ध का मतलब जिनका नाम लेने मात्र से संसारी प्राणियों के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए बहुत सारे आचार्यों ने जब किसी ग्रंथ का शुभारंभ किया तो सिद्धि शब्द या सिद्ध शब्द से उन्होंने शुरू किया कि ताकि मुझे अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त हो और ये कार्य निर्विघ्न रूप से सिद्ध हो सके। तो पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता जी भी जब किसी ग्रंथ का शुभारंभ करती हैं तो वे स्वयं सिद्ध शब्द को ज्यादा प्राथमिकता प्रदान करती हैं। जैसे उन्होंने षटखंडागम ग्रंथ की सिद्धांत चिंतामणि टीका का शुभारंभ किया सन 1995 में, तो उसके अंदर भी यही कहती हैं, सिद्धांत सिद्धार्थमानम्य सर्वांश त्रैलोक्य मूर्धगान इष्टा सर्व क्रियांते सौ शांति सौहृदि धार्यते। अर्थात सिद्धांत सिद्धार्थमानम्य सिद्धों को सिद्धि के लिए नमस्कार करके, यानी मैंने जो दुरु कार्य प्रारंभ किया है इस कार्य की सिद्धि हो इसलिए समस्त सिद्धों को नमन करती हूँ। सर्वांश त्रैलोक्य मूर्धगान जो सिद्ध संपूर्ण सिद्ध अनंतानंत सिद्ध भगवान जो तीन लोक के मस्तक पर यानी कि तीन लोक के ऊपर तनुवात वले का स्पर्श करती हुई सिद्ध शिला के ऊपर विराजमान है, ऐसे सिद्धों को नमन करके इष्टा सर्व क्रियांते सौ शांति सो हृदयदारिति, जो इष्ट क्रिया कोई भी इष्ट कार्य होता है तो उसमें याद किए जाते हैं। जब भी कोई भक्ति पाठ होता है तो सबसे पहले उसमें सिद्ध भक्ति आती है और सबसे अंत में उसमें शांति भक्ति पढ़ते हैं और उसके बाद में प्रिय भक्ति समाधि भक्ति को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया, सिद्ध शब्द के माध्यम से हमने आपको बताया कि कार्य की सिद्धि के लिए सिद्धों का स्मरण किया जाता है। यहाँ आचार्य देव का कहना है कि क्रम से आप मिथ्यात्व से लेकर के और अयोग केवली तक 14 गुण स्थानों के नाम जाने और इन 14 गुण स्थानों से जो अतीत हो जाते हैं और ऊपर पहुंच जाते हैं वे जो हैं सिद्ध भगवान कहलाते हैं, वे गुणस्थानातीत होते हैं और समस्त अघातिया कर्मों का नाश कर देते हैं। तो आपको ये सुंदर सा चित्र दिख रहा है 14 गुणस्थान का, जिसकी सीढ़ियां नीचे से ही प्रारंभ होकर के ऊपर तक गई हैं, यानी सबसे नीचे की सीढ़ी सबसे पहली सीढ़ी है मिथ्यात्व गुणस्थान। उसके नीचे आप देख रहे हैं कि एक समुद्र के अंदर व्यक्ति डूबा हुआ है, यानी कि अनादिकाल से मिथ्यात्व के कारण संसार रूपी समुद्र के अंदर प्रत्येक प्राणी डूब रहा है और जब उसे कुछ भी बोध आता है यानी दर्शन मोनी की कर्म प्रकृतियों को नष्ट करके जब वो पाए पे पैर रखना सीढ़ियों पे पैर रखना शुरू करता है तब उसके गुणस्थानों का शुभारंभ होता है और धीरे धीरे करके जब गुणों में पारंगत हो जाता है तो वह मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो 14 गुणस्थान तक की सीढ़ियों पर पैर रख करके और मोक्ष महल के ऊपर पहुंच जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें दिखाई हैं कि 5 गुणस्थान तक तो रंगीन कपड़े पहने हुए श्रावक श्राविकाएं दिखाए हैं कि अविरत सम्यक दृष्टि और देश विरत तक गृहस्थ लोग होते हैं और उसके बाद नग्न दिगंबर मुनियों की श्रृंखला जो चली है यानी 6 गुणस्थान से प्रमत्त विरत अवस्था प्रारंभ होती है जो मुनियों में होती है और मुनि ही आगे की गुणस्थानों में चढ़ सकते हैं, कोई भी श्रावक 5वें गुणस्थान से ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर मुनिगण ही जाते हैं। और फिर एक तरफ आपको दिख रहा है कि उपसम श्रेणी के ऊपर मुनिराज चढ़ रहे हैं, तो उपसम श्रेणी में देखो 2 मुनिराज नीचे की सीढ़ी पर हैं उपसम श्रेणी में और 2 मुनिराज ऊपर की श्रेणी में हैं। तो जो उपसम श्रेणी में मरण को प्राप्त हो जाते हैं वे जाकर के पंच अनुत्तर विमानों में जन्म ले लेते हैं और जो मुनिराज उपसंग श्रेणी से मरण को प्राप्त हो गिर जाते हैं तो वो आकर के फिर से छठे सातवें गुण स्थान में आ जाते हैं या पांचवें चौथे में भी आ जाते हैं या मिथ्यात्व में भी आ सकते हैं। इन सब सिद्धांतों को भी इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। और जो आगे छपक श्रेणी पर चढ़ते चले जाते हैं तो वो बारहवें गुण स्थान को पार करके और संयोग केवली गुण स्थान में जाकर अरहंत अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। पुनः चौदहवें गुण स्थान पर जाकर एकदम क्रम से ऊपर अर्धचंद्राकार सिद्धशिला है जहाँ पद्मासन और खड्गासन मुद्रा में सिद्ध भगवान विराजमान हैं। ये आपको दिखाया गया चित्र चौदहों गुण स्थान का। ऐसे ही अनेक सिद्धांतों को चित्रों के माध्यम से भी प्रस्तुत करते हैं और ग्रंथ में तो आचार्य देव के द्वारा वर्णन किया ही गया है। आप एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म .com के अंदर जब जाएंगे तो ऐसे तमाम सिद्धांत और प्रथमानुयोग करणानुयोग चरणानुयोग द्रव्यानुयोग का स्वाध्याय आपको करने को मिलेगा। ये भी जो चित्र दिखाया गया ये एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म .com के अंदर प्रदर्शित किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, उसी को यहाँ पर हमारी ब्रह्मचारिणी बहन ने दिखाया है आपको। अब आपको जानना ये है गुणस्थान कितने हैं? 14। तो 14 की संख्या पहले याद रखें और फिर 14 के नाम आपको याद रखना है। तो अब इसके अंदर बताते हैं कि जो 5 नंबर की गाथा में चौथे गुणस्थान के साथ जो अविरत शब्द दिया गया है, मिच्छो शासन मिस्सु अविरत सम्मो, अविरत शब्द जो दिया गया है उसको बताया। ये अंत दीपक है। अंत दीपक का मतलब ये बाकी के इसके आगे के जो 3 गुण स्थान हैं वह भी अविरत ही होते हैं। अंत दीपक एक न्याय होता है। जैसे कोई हॉल है, कोई कमरा है, मंदिर है, तो उसमें आगे से प्रवेश करते हैं, बिल्कुल पीछे कोई दीपक रखा हो तो पीछे के दीपक से आगे का भाग भी प्रकाशित हो जाता है। ऐसे 2-3 न्याय हैं, अंत दीपक, आदि दीपक और मध्य दीपक। तो ये अंत दीपक इसलिए है कि प्रारंभ के 4 गुण स्थान जो हैं उसमें चौथे में अविरत दिया है, बाकी में नहीं दिया है। तो वे 3 गुण स्थान भी अविरत ही हैं, यानी 4 गुण स्थान अविरत वाचक हैं। तो ये अंत दीपक न्याय है। और उसके बाद फिर विरदा पमत इधरो, यानी छठे गुण स्थान में प्रमत्त शब्द है, प्रमत्त गुण स्थान से जो विरत शब्द है उसके अंदर, तो उससे आगे जानना कि सारे के सारे आगे के गुण स्थान वर्ती विरत माने त्यागी ही रहते हैं, संसार शरीर भोगों से विरक्त ही रहते हैं। तो छठे गुण स्थान से मुनियों की श्रेणी शुरू होती है। जो संसार शरीर भोगों से विरक्त हो जाते हैं, विरत हो जाते हैं, त्यागी हो जाते हैं, उनके लिए विरत शब्द का प्रयोग किया। तो ये है आदि दीपक। आदि दीपक मतलब कमरे के अंदर घुसते ही सबसे शुरू में कोई दीपक रख दिया जाए तो उससे भी टिमटिम रोशनी के द्वारा पूरा कमरा प्रकाशित हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? तो ऐसे ही शुरू के नाम के साथ विरत शब्द लगाया, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत। तो उसके आगे पूरे 14 गुण स्थान तक विरत शब्द लगाना है कि जो ग्रह आरंभ परिग्रह आदि को त्याग करके और विरत हो जाते हैं, त्यागी हो जाते हैं, संयमी बन जाते हैं, उनके साथ विरत शब्द लग जाता है। तो ये आदि दीपक न्याय बताया है। इन सब चीजों को सिद्धांत ग्रंथों के द्वारा ही पता चलता है। इसलिए छठे गुण स्थान से लेकर संपूर्ण गुण स्थान विरत ही होते हैं और संपूर्ण गुण स्थान वर्ती त्यागी ही होते हैं, इस बात को जानना है। ऐसे ही छठे गुण स्थान में 11वें से लेकर 14वें गुण स्थान तक नाम बताया, पुनः सिद्धों को आगे की श्रेणी में लिया है। सिद्ध भगवान पांचों परमेष्ठियों में सर्वोत्कृष्ट, सबसे अधिक गुणवान होते हैं। लेकिन नमोकार महामंत्र में नमो अरिहंताणम नमो सिद्धानम, दूसरे श्रेणी में सिद्धों को लिया। इस पर काफी चर्चाएं हुई, काफी संगोष्ठियां हुई। यह अनादि निधन नमोकार महामंत्र है और इसकी टीकाओं में आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला के अंदर कहा कि अरहंत भगवान को इसलिए लिया है पहले कि अरहंत भगवान ही सिद्धों का स्वरूप बताने वाले हैं। जब सिद्ध बन जाते हैं तो वो केवल सिद्ध शिला पर अपनी आत्मा में रत हैं और न संसार में आते हैं, न किसी प्रकार की उनकी कोई दिव्य ध्वनि खिरती है और न वे अपने सुख के बारे में बता सकते हैं। अरहंत भगवान ही ऐसे हैं जो सारी चीजें संसार और मुक्त अवस्था की बताते हैं। तो इसलिए उपकार की दृष्टि से सर्वप्रथम अरहंत भगवान को रखा है, नमो अरिहंताणम। कहीं कहीं लोगों ने और भी तरह की आशंकाएं की कि जैनी लोग वैभव को नमस्कार करते हैं, अरहंत भगवान के पास समोसरण का वैभव होता है, इंद्र आदि आते हैं, इसलिए पहले अरहंतों को नमन किया। ये कारण केवल एक कारण नहीं है, ये तो है कि 100 इंद्रों से वंदित हैं भगवान। सिद्ध बनने के बाद फिर उनकी वंदना के लिए आने वाले देवता इंद्र कभी दिखते नहीं, लेकिन अरहंत भगवान 100 इंद्रों से भी वंदित हैं, तीनों लोकों के द्वारा वंदनीय है और उसके साथ उनका जो परम उपकार संसारी प्राणियों पर रहता है कि वो अरहंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने की विधि बताते हैं। नीचे से लेकर सब साउणम आर्याणम उवज्जाणम सबको बताते हैं कि किस प्रकार से आप संसार से मुक्त हो सकते हैं। तो संसारी और मुक्त इन दोनों जीवों के लक्षण को बताने वाले अरहंत भगवान ही हैं, इसलिए उनको नमोकार मंत्र में पहले पद में नमस्कार किया गया। इससे ये नहीं समझना है कि अरहंत भगवान सिद्ध से बड़े हैं। सिद्ध भगवान चूंकि आठों कर्मों से रहित हो जाते हैं इसलिए वे ही बड़े होते हैं। तो इस सूत्र में जो क्रमेण शब्द है उसका मतलब क्रमेण, अर्थात उससे ये सूचित होता है कि जीव के सामान्यतया दो भेद होते हैं, संसारी और मुक्त जीव। मुक्त अवस्था संसार पूर्वक ही होती है, कोई सदा सदा शिव नहीं है, जो संसार में आए हैं वही मुक्त होंगे, वही सिद्ध होंगे। तो संसारी और मुक्त ये दो अवस्थाएं हुआ करती हैं। संसारियों के गुण स्थानों की अपेक्षा से 14 भेद हैं, यानी जब तक संसारी जीव है तभी तक 13वां-14वां गुण स्थान भी बनता है। इसलिए केवल ज्ञानी भगवान को ईषत संसारी कहा, ईषत मुक्त कहा कि वो आधे मुक्त हो गए और आधे अभी संसारी हैं, क्योंकि संसार में रह करके हमें दिव्य ध्वनि का पान करा रहे हैं। तो इन गाथाओं के अंदर बहुत सार छिपा हुआ है, उस पूरे सार को आपको जितना संभव हो सके का हम बताएंगे कि ईश्वर को पुनरावतार नहीं माना गया है। जैन धर्म के अनुसार जो सिद्ध हो गए वे हमेशा के लिए अनंत काल तक के लिए सिद्ध हो गए। इस प्रकार से 14 गुण स्थानों का इन पांचवी और छठी गाथाओं में हमने आपको 14 गुण स्थानों के नाम बताए हैं। आगे क्रम से एक एक गुण स्थान के लक्षण को आप जानते रहिएगा और इसी प्रकार स्वाध्याय करके अपने ज्ञान को वृद्धिगत करें। यही आज के स्वाध्याय का सार है।